हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो इनका प्रश्न था कि उनका प्रश्न ये था कि वो रिहैबिलिटेशन में जाते हैं माता जी, और वहाँ पर कई सारी माताएं हैं जो बहुत दुखी रहते हैं, उनको पता लगता है कि हम बहुत पापी हैं, हमने पाप किया है। कुछ लोगों को लगता है कि हमको स्पेशल सेवा दी गई है, लेकिन अधिकतर लोगों को लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, बिल्कुल अकेले हो गए हैं, अभी किसी को मिल नहीं पाते हैं, बहुत समय इसमें गुजरता है, बेसिकली बहुत दुखी रहते हैं, तो उनको कैसे हैंडल करना चाहिए। तो उसके उत्तर में मैं बता रहा था कि जब मुझे ऐसा बालक हुआ था 12 साल पहले, तो महाराज जी ने मुझे बताया था कि उसके पहले सब लोगों को लग रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, ब्रजेश्वरी कोई क्यों, विश्वरूप कोई क्यों, और कोई नहीं था क्या, इनको ही क्यों, इन्होंने इतने साल से मंदिर में रहे हैं, ऐसा वैसा बहुत सारा एक प्रेम की वजह से उनको लग रहा था। तो सबका एक कॉमन रिएक्शन था कि मुझे ही क्यों ऐसा बालक होना चाहिए, इतना सब करने के बाद में उनको ही ऐसा बालक क्यों होना चाहिए। तो महाराज जब मिले तो महाराज ने एकदम टोटल उल्टा बताया उसका। महाराज ने बताया कि ये कृष्ण का बहुत प्रिय और स्पेशल बालक है जो उन्होंने आपके लिए भेजा है, और वो स्पेशल और भगवान का प्रिय बालक है, इसलिए उसकी कुछ स्पेशल ज़रूरतें हैं जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने आप दोनों को योग्य समझा है, आप लोगों को योग्य समझा है, और जब वो जब ऐसे बालक की सेवा आपको देते हैं तो उसके साथ उसको करने की शक्ति भी आपको देंगे, है ना। विद द ऑर्डर ऑलवेज एम्पावरमेंट कम्स, जब कोई आज्ञा होती है तो वो आज्ञा पूरी करने की शक्ति भी दी जाती है किसी को भी, आपके आप भी आपके सेवक को कुछ काम देते हो तो काम करने का एटमॉस्फेयर भी प्रोवाइड करते हो ना, तो ऐसा इम्पॉसिबल टास्क उसको देते नहीं है। भगवान कोई सैडिस्ट नहीं है, भगवान जो है ना, सैडिस्ट का मतलब क्या बताया उसको हिंदी में, सैडिस्ट का मतलब जो क्या है ना, ऐसा काम देंगे जो आपको कभी होगा ही नहीं आपसे, और जिसके वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे पूरा, ऐसे भगवान नहीं हमारे ऐसे दुष्ट लोग करते हैं, हिटलर जैसे लोग करते हैं, जानबूझ के लोगों को फ्रस्ट्रेट करने के लिए ऐसा काम देते हैं जो उससे होगा ही नहीं कभी, और ना होने पर डांटेंगे उसको, फिर ना होने पर और डांटेंगे और उसका जो मनोबल है उसको नष्ट कर देंगे। ये आजकल के दुनिया के लोग ऐसे करते हैं, उसको कहते हैं टायरेंट, उसको कहते हैं सैडिस्ट, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान हमेशा जब मुश्किल देते हैं कोई तो उसमें से निकलने का रास्ता भी देते हैं, भगवान इतने दयालु हैं कि वो कहते हैं ना, इफ़ ही हैज़ पुट यू इन इट ही विल पुट यू थ्रू इट, मतलब अगर भगवान ने आपको उस स्थिति में डाला है तो वही आपको उसमें से पार भी कर देंगे, ऐसे एक कहावत हमेशा आती है, इफ गॉड हैज़ पुट यू इन इट ही विल पुट यू थ्रू इट ऑल्सो, वो भी आपको निकालेंगे उसमें से, और वो केवल निकालेंगे नहीं, लेकिन जब वो निकालेंगे तो आपको बहुत सारी अनुभूतियाँ, बहुत सारा साक्षात्कार और जानकारियाँ दे देंगे, उसके ज्ञान दे देंगे आपको साथ साथ, आपको किसी बड़े दिव्य से वो निकाल देंगे बाहर, कष्ट से बाहर निकाल देंगे आपको, लेकिन वो करते समय आपको कई अनुभूतियाँ आपको दे, अंदर की जानकारियाँ दे देंगे वो साक्षात्कार। तो महाराज ने कहा कि आप लोग बड़े भाग्यवान हो, इसलिए आपको घर में एक विशेष जीव भगवान ने भेजा है, वो शरीर से बहुत अपंग होगा, शरीर से कमज़ोर होगा और बच्चों से अलग होगा, तो आपको वो नॉर्मल बालक होने का जो सुख होता है ना, वो तुतले तुतले बोल बोलेगा, मम्मी पापा पुकारेगा, वो बहुत सारा चीज़ करेगा ना जो मम्मी पापा को खुशी होती है उससे, जो ऐसे बालक को देखते हुए उसके लालन पालन में बहुत आनंद प्राप्त होता है माता पिता को, उसका वात्सल्य की पूर्ति हो जाती है। तो वो सब जो नॉर्मल वात्सल्य पूर्ति आपकी पहले बालक में शायद हो गई होगी, तो दूसरे बालक में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी वो मतलब बालक ना चलेगा, ना उठेगा, ना बैठेगा, ना दिखेगा, ना कुछ करेगा नॉर्मल बालक की तरह। तो फिर भी ये आपके लिए भगवान ने दी हुई विशेष सेवा है, और आप उसको कर भी पाओगे, आप निश्चिंत रहो, अच्छी तरह से करो उसको। तो मैं ये कह रहा था कि दुनिया में जो स्थितियाँ होती ना वो हमेशा चलती रहती हैं, त्रिविध ताप जो है वो चलते रहते हैं, है ना। अभी गर्मी हो रही है, बाद में सर्दी होगी, बाद में वर्षा आएगी, तूफान आएगा, बाढ़ आएगी, सब कुछ टूट जाएगा, बिजली गिरेगी, फिर कोई किसी को रोग हो जाएगा, जीवन में किसी को रोग होना है तो हो जाएगा, किसी को बहू से तकलीफ है तो आएगा, किसी को सासू की तकलीफ है, किसी को और किसी की तकलीफ है, किसी का पैसे का लॉस हो जाएगा, किसी का बच्चा ड्रग पी रहा है, किसी का कुछ कुछ हो रहा है, तो हर एक को हर एक प्रकार का ताप जो है वो मिलते रहता है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आत्मिक, ये ताप सबको मिलते रहते हैं। लेकिन शास्त्र में लिखा है ऐसे कि जो व्यक्ति संकट के होते हुए भगवान को धन्यवाद देता है, उसको प्रणाम करता है, धन्यवाद देता है, और उसी को भगवान की कृपा मानता है कि ये आपकी कृपा है, वो व्यक्ति को भगवान का धाम प्राप्ति उसका हक बन जाता है, वो कृपा नहीं होती उसके ऊपर, सदाय भाक, यानी ये जो भगवान धाम प्रवेश है, मोक्ष है, ये उसके लिए हक बन जाता है उसका, वो उसका हकदार हो जाता है। वैसे ही श्रीमद् भागवत के जैसा ये ग्रंथ है जो सनातन जी महाराज ने लिखा है, गोस्वामी जी ने, बृहद भागवतामृत, उसमें लिखा है कि जो व्यक्ति भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए कठिन से कठिन संकट भी उनके मुक्ति का कारण बन जाता है। मतलब उसका इंग्लिश में ऐसे मैंने सुना था, ऑल द वर्स्ट थिंग्स टर्न टू बी बेस्ट फॉर दोज हु लव गॉड। ऑल द वर्स्ट थिंग्स है, वर्स्ट ही वो, मतलब बहुत दुर्गम कठिनाइयां हैं वो, वैसे ही रहते वो, लेकिन वही दुर्गम कठिनाई उस व्यक्ति के जीवन में उसके लिए अनुकूल चीज़ बन जाती है जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है। तो भगवान से प्रेम करने से कठिन वस्तु भी है तो उसके लिए भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल बन जाती है, उसके लिए शक्ति का स्रोत बन जाती है, उसके लिए आनंद का स्रोत बन जाती है, उसके लिए हर चीज़ का स्रोत बन जाती है। तो मैं ये सोचता था कि कृष्णा भावनामृत जो है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये कई चीज़ों का लाभ देता है ना हमको। कृष्ण नाम लेने से पाप धुल जाते हैं, कृष्ण नाम कीर्तन करने से पाप का प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है, पाप का बीज नष्ट हो जाता है, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। भगवान का प्रेम प्राप्त भी नहीं हुआ तो कम से कम इस जीवन में आनंद प्राप्त होता है, दुखों को सामना करने का शक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसे कई लाभ कृष्ण भावना को प्राप्त करने से होता है। आगे आ जाके हम भगवान के धाम में पहुँचेंगे कि नहीं वो तो आगे की बात है, लेकिन जब तक नहीं पहुँचे भी है तब तक भी ये जीवन भी जो है वो आनंद से भर जाता है ना। लेकिन मैं थोड़ा सा और गहराई में जाके सोचता था कि कृष्ण भावना एक ऐसा साधन है जो उसको पालन करने वाले व्यक्ति को दुखों के बीच भंवर में भी खुश रख सकता है। ऐसा मैं सोच रहा था एक दिन, टू बिकम ब्लिसफुल इन द मिडल ऑफ बिगेस्ट क्राइसिस इन लाइफ इज वन ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावना को आप सही रूप से अपनाते हैं जीवन में तो जीवन के भयंकर संकट में भी आप आनंदी हंसते हुए रह सकते हो। तो आपको लगेगा बहुत फिल्मी बात है ये, बहुत बहुत कविता जैसी बात है एकदम, काव्यात्मक बात है, पर एक्चुअली ये हकीकत है। जैसे पांडव लोग थे, इतना कष्ट सहन किया उन्होंने। कभी आपने महाभारत में पढ़ा है क्या कि युधिष्ठिर गाली दे रहे हैं भगवान को, भीमसेन पत्नी से बात कर रहा है भगवान को गाली देते हुए, क्या फ़ायदा हुआ वो कृष्ण की भक्ति करके, इतना उसका हम लोग भक्ति करते फिर भी जंगल में पड़े हैं, नंगे पैर घूम रहे हैं, हाँ इतना आतंक हो रहा है, जहर पिलाया गया है, तुम्हारा वस्त्र निकालने का प्रयास किया गया, ये क्या भक्ति करने का लाभ है क्या? इसके लिए भक्ति करते हैं हम लोग, छोड़ देना चाहिए उसकी भक्ति को, क्या फ़ायदा है उस भक्ति करके? ऐसा कभी आपने सुना है क्या? कभी वर्णन पढ़ा है ऐसे युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, कुंती बोल रही है, कैसा हमारा भांजा है, उसके भजन करते हैं हम लोग और कितना कष्ट पाते हैं, जीवन में हमारे कितना अपमान हुआ है, कितने संकट आए हैं, साम्राज्य समृद्धि पैसा इज्जत सब चले गए हमारी। क्योंकि ये सब बातें हैं ना, जब गोपा कुमार होता है ना, गोपा कुमार वो एक एक करके सब भक्तों को मिल रहे हैं ना, वन बाय वन। आपको पता है ना बृहद भागवतामृत कहानी क्या है? एक भक्त होता है गोप कुमार, बृहद भागवतामृत एक पूरा शास्त्र है, पूरा उसका तीन बड़े बड़े खंड है उसके, इतने बड़े बड़े, उसके अंदर गोप कुमार नाम के भक्त की यात्रा का वर्णन किया गया है। तो वो एक भक्त को जब मिलता है तो वो भक्त कहता है कि मैं अच्छा उदाहरण नहीं हूँ तुम्हें, तुम्हारे लिए तुम उसके पास जाओ, वो श्रेष्ठ भक्त। फिर वो वहाँ जाता है, फिर वो बोलता है अरे मैं भी नहीं हूँ, वो तो उसके पास जाओ, वो उसके भी श्रेष्ठ है। फिर बोलता है अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, उसके पास जाओ, वो अच्छा श्रेष्ठ है। फिर वो ऐसे करते 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 वो गोपियों तक पहुंचता है। तो इसके बीच में एक बार वो पांडवों के पास में आता है, कोई उसको बोलता है कि पांडवों के पास जाओ, वो सारे बहुत भक्त है भगवान के। तो पांडव उसको मालूम है क्या बोलते हैं? पांडव नम्रता से उनको बोलते हैं कि हमारा जीवन है ना एक आदर्श जीवन नहीं है, प्रेरणात्मक जीवन भी नहीं है। देखो अभी हमने भक्ति किया भगवान का, लेकिन हमारा जीवन देखो, हमको वनवास जाना पड़ा, हमारा राज्य हमारा नष्ट हो गया, हमारा धन दौलत इज्जत सब नष्ट हो गई, पत्नी का अपमान किया गया, कितने कष्ट हुए, मेरी माता को देखो कितने कष्ट हुए, हमको देखो कितने कष्ट हुए। तो हमारा जीवन जो है ना वो किसी के लिए इतना इंस्पायरिंग नहीं है, वो हमको देख के भक्ति करने का ज़्यादा प्रेरणा नहीं मिलेगा उनको, उनको लगेगा अरे हम लोग भक्त करके बनेंगे तो हमारा भी ऐसा हालत हो जाएगा। हाँ है ना, क्या होता है वो भगवान बोलते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है ना उसका मैं सब कुछ छीन लेता हूँ धीरे धीरे। हाँ और एक संस्कृत में है, हाँ एक संस्कृत में भी श्लोक है उसका, सर हरिश्यामी शनै शनै कुछ एक श्लोक है उसका। उसका मतलब ये है कि जो भगवान की भक्ति करता है सही रूप में करता है उसका मैं धीरे धीरे सब कुछ छीन लेता हूँ। तो कहेंगे नहीं नहीं वो हमको नहीं बनना है ऐसे कुछ, तो इसलिए आप कहते हैं प्रहलाद महाराज के पास जाओ, वो बड़े श्रेष्ठ एग्जाम्पल हैं। उनको अग्नि में डाला गया तो भी भगवान ने झेला, उनको बचाया, और पहाड़ से फेंका तो भी उनको बचाया, वो एक श्रेष्ठ भक्त का उदाहरण है। ऐसे करके आगे आगे हर एक व्यक्ति अपना अपना दोष बताता है उसके अंदर। तो ये बात कहाँ से निकली? ये बात निकली कि भगवान के जो भक्त होते हैं ना, ये बात कहाँ से निकली थी? नहीं नहीं गोपुआ ठीक है, पांडव 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 के बारे में। तो पांडव ने कभी आपको बताया क्या ऐसे कि मुझे वो इतना सब कष्ट हुआ है वगैरह? उन्होंने एक नम्रता से बताया कि आपको श्रेष्ठ भक्त का उदाहरण चाहिए ना, तो हमारा एग्जाम्पल इतना इंस्पायरिंग नहीं है लोगों के लिए, आम आदमी के लिए इतना इंस्पायरिंग नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। बट उन्होंने भगवान को दोष नहीं दिया कि ये सब बेकार है, आप भक्ति भी तो क्यों करते हो, देखो हमारे जीवन को देखो हमारी क्या हालत हो गई है, और फिर भी आप भक्ति करने को जा रहे हो, कितने मूर्ख हो तुम, ऐसा नहीं बताया उन्होंने कभी उनको। क्योंकि हृदय से वो हमेशा आनंद में थे, चाहे जंगल में थे, राज्य में थे, राजा बने या तो नहीं बने, हर समय में वो आनंदित थे। तो ये बात कहाँ से निकली? कि कृष्ण कॉन्शियसनेस हमें जीवन के सबसे बड़े संकट में भी आनंदी रहने का जो फॉर्मूला है, रहस्य जो है, वो आपको प्राप्त करा सकता है। तो जब आप ये माताओं को मिलते हो, निश्चित रूप से वो लोग अगर डिवोटी नहीं है ना, तो आम जनता उनको बोल देगी क्या रे तुम्हारा बेचारे, तुम लोग ऐसा पिटी करते होंगे उनके ऊपर, ऐसे दया करते होंगे बेचारे। और बाद में फिर क्या होता है, धीरे धीरे उनसे सब लोग मिलना बंद कर देते हैं, क्योंकि तो इनके घर में तो वही कहानी है रोज, कोई नई कहानी तो है नहीं, खुशी की बात तो है नहीं कुछ, तो लोग उनका सहारा छोड़ने लगते हैं। फिर बहुत पैसे खर्च होते हैं उनके, तो उसमें से भी वो गरीबी आ जाती है उनको। फिर शरीर से वो थक जाते हैं, क्योंकि रोज़ उनको बच्चे को उठा के लेके आना है, वापस लेके जाना है, बच्चा रोएगा पिएगा, खाना पीना खिलाना है, बच्चा डेफिशिएंट है, उसको सुनाई नहीं पड़ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, चल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है ना, अपंग है। तो वो मन से तन से समाज की दृष्टि से हर दृष्टि से वो हार जाते हैं। तो ऐसे अवस्था में उनको ना बहुत होपलेस लगता है, जैसे कैंसर का मरीज कैसे रहता है, वो भी शरीर से भी हार गया है, मन से भी हार गया है, पैसे से भी ख़त्म हो गया उसके, समाज की दृष्टि से भी वो हार गया है, और स्पिरिचुअली उसको लगता है कि मैं तो मर रहा हूँ, मेरा क्या होगा पता नहीं। तो जिस चीज़ को आप देखते हैं ना, होप्स आशा के रूप में देखते हो ना, समझे आप बहुत गरीब हो तो सोचते हो कि कम से कम मेरा शरीर तो अच्छा है ना, लेकिन वो उसके बाद में शरीर भी बीमार हो गया तो फिर वो उसका हौसला ख़त्म हो जाता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ बाइबल की। बाइबल में एक भक्त था, मैंने पहले भी सुनाया आपको एक कहानी, उसमें एक भक्त था बाइबल के ज़माने में, जोब नाम का था भक्त। तो जोब बहुत अच्छा भक्त था भगवान का, उसका बड़ा परिवार था, तो वो बहुत बच्चे थे उसके, उसका लकड़ी का बखार था उसका, भगवान का बड़ा भक्त था। एक बार भगवान और शनि, मतलब ये क्या कहते हैं उसको, सैटर्न यानी क्या कहते हैं उसको, शैतान, हाँ शैतान और भगवान के बीच में मुलाकात हुई। और भगवान ने कहा देखो जोब मेरा कितना अच्छा भक्त है, तो सेकंड कहता है कि हाँ हाँ अच्छा भक्त है, क्यों नहीं, उसके इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा प्रॉपर्टी है, इतना बड़ा पैसा है, तो बनेगा ना अच्छा भक्त, क्या उसमें नहीं होगा तो फिर बनेगा भक्त तो बड़ी बात है। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं वो मेरा अच्छा भक्त है। तो वो कहता है कि चलो मैं भी उसका परिवार नष्ट कर देता हूँ, फिर देखता हूँ उसका भजन कितना अच्छा है। तो इसमें परपोट क्या है मन में, कि सैटर्न कोई भी चीज़ भगवान की परमिशन के बिना नहीं कर सकता है, अपने आप में वो नहीं कर पाया, भगवान से परमिशन लेके ही वो करता है। इसलिए करते जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है, ऐसा मत समझना कि अरे भगवान सो रहे हैं क्या, क्या उनको पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, ऐसा नहीं होता है। हर एक पत्ता भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिल सकता है। तो सैटर्न भगवान की परमिशन लेके एक दिन जॉब को ऐसे करता है कि वो बाहर निकल जाता है अकेला। हाँ नहीं, एक दिन क्या करता है वो, उसका परिवार और वो लेकर सब लोग पिकनिक मनाने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो जब लौट के आते हैं ना सब बड़ा परिवार, सब बच्चे वगैरह, देखते हैं कि उनका घर जल रहा है, पूरा प्रॉपर्टी वखार बिखार सब जल रहा है, जहाँ बिजनेस था वो घर था सब जल गया। ऐसा कहते हैं कि पहला उसका बिजनेस का जगह जल गया पूरा। तो जॉब ने कहा थैंक यू माई लॉर्ड, जो आपने किया वो अच्छा ही किया, मेरे लिए अच्छा ही होगा। तो वापस जॉब, और जॉब के लिए भगवान शैतान को मिलते हैं। भगवान कहते देखो मैंने कहा ना वो मेरा भक्त है। तो शैतान क्या बोलता है, हाँ अभी तो खाली बिजनेस ही खत्म हो गया है, इतना बड़ा परिवार और घर तो है ना उसका, अच्छा अभी मैं उसका घर भी नष्ट कर देता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है। तो फिर वो अगली बार जब जाता है तो अकेला कहीं काम से निकल जाता है, तो उसका घर और परिवार दोनों जल के नष्ट हो जाते हैं। वापस लौट के देखता है अरे मेरा घर जला हुआ है, सब घर के अंदर सब कुछ जल गए, सब लोग मर गए, सब लोग, और वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और वो सोच रहा है कि थैंक यू माय लॉर्ड, जो भी आप कर रहे हो वो अच्छा ही होगा मेरे लिए। तो भगवान कहते हैं देखो शैतान, देखा ना मैंने कहा ना आपको कि जो मेरा बहुत बड़ा भक्त है। बोला देखो भगवान, उसका परिवार गया, पैसा गया, सब कुछ, लेकिन उसके बाद अभी तक एक अच्छा शरीर है, वो दोबारा शादी कर सकता है, दोबारा परिवार बना सकता है, दोबारा मेहनत कर सकता है, दोबारा पूरा सारा खड़ा कर सकता है वो। अभी उसका शरीर अगर खुश होता है तो मैं देखता हूँ कितनी भक्ति है उसके अंदर। तो जो वो थैंक यू करके भगवान को प्रार्थना करके पेड़ के नीचे रात को सो जाता है। लेकिन अगले दिन जब जो उठता है ना वो, तो उसके शरीर पे इतने फोड़े होते हैं, इतने फोड़े होते हैं कि दो फोड़े के बीच में उसकी उंगली भी जा सकती नहीं है, इतने फोड़े उसके शरीर में हर जगह फैले होते हैं, उसके अंदर सब में पीप भरा होता है और सब में इतना दर्द होता रहता है। उस दर्द से वो उठता है और वो देखता है अरे क्या हुआ मुझे, इतना रात को मैं अच्छा सोया था, अभी सुबह उठने के बाद क्या हुआ ये। तो वो बोलते हैं हे भगवान ऐसा क्यों हो रहा है, वाई। तो शैतान बोलता है सी गॉड आई टोल्ड यू ना, सी वाह वेरी इज डिवोशन, कहाँ गया उसका डिवोशन। तो तब है ना भगवान शैतान को छोड़कर तुरंत नीचे आ जाते हैं और उसको दर्शन नहीं देते हैं, उससे बात करते हैं आवाज़ से, ध्वनि से, और जॉब का हौसला बढ़ाते हैं। तो जॉब डोंट वरी आई एम देयर विथ यू। तो जॉब ये सब सुनने के बाद में कुछ देर के बाद में थैंक यू माई लॉर्ड ऐसे बोलता है। तो भगवान शैतान को बोलते हैं देखा आपने जो मेरा भक्त है। कितनी सुंदर कहानी है ये। हाँ तो जब जॉब का, अभी इसमें क्या है, उसका बिजनेस खत्म हो गया तभी उसने धन्यवाद दिया भगवान, मतलब उसके अंदर वो अंदर की शक्ति थी इसको भी एक्सेप्ट करके थैंक यू बोलने की, तो थैंक यू बोला उसने। फिर उसका घर जल गया, फिर उसका परिवार जल गया, तब भी उसके अंदर वो शक्ति थी, श्रद्धा थी कि जो कर रहे हैं भगवान अच्छा ही कर रहे हैं, तो उसने थैंक यू बोला। तो अपने पास में उसको जितनी शक्ति थी उसने उसको थैंक यू बोलते गया। वो जब उसको असह्य हो गया ना, तो उसने भगवान को कुछ टोका नहीं उन्हें, ऐसा क्या भगवान अभी ऐसा क्यों किया तुमने, ऐसा नहीं, लेकिन वो भाई भाई लॉर्ड ऐसा उसने एक दर्द से पुकारा भगवान को, मतलब उस समय धन्यवाद देने की शक्ति उसकी समाप्त हो गई। लेकिन उसकी भगवान के ऊपर श्रद्धा थी, भगवान को उसको वो ऐसा बोला नहीं आज से भगवान को मैं नहीं मानूंगा, आज से मैं भगवान की भक्ति बंद कर दूंगा, अभी मैं कुछ भी नहीं करूंगा, बहुत हो गया अभी, ऐसा नहीं बोला उसने। खाली उसने अभी दर्द से, हम चीखते ना कभी ओ ऐसा, उसने चीखा थैंक यू नहीं बोल पाया वो। तो भगवान ने क्या किया, तुरंत आके उसको ऐसा काउंसलिंग किया जिससे उसको शक्ति प्राप्त हुई दोबारा धन्यवाद बोलने की। तो हमको भी वही करना है। हमको क्या करना है एक्चुअली, हमको उस व्यक्ति को धीरे धीरे क्यों ना हो, जैसे कैंसर के पेशेंट हो या और किसी चीज के पेशेंट हो या एक अपाइज बालक की माता हो, कोई भी बड़े संकट वाला भी मरीज है, उसको करना क्या है, उसको केवल वो श्रद्धा देने का प्रयास करना है कि आपको कुछ विशेष काम के लिए भगवान ने ये काम दिया है और भगवान की इसमें कुछ विशेष योजना है आपके लिए, आपके ऊपर कोई शाप नहीं है। हाँ, कर्म वर्म तो होते रहते हैं, लेकिन आप वो सोचना नहीं कि मैंने बड़े पाप किए थे इसलिए मैं भोग रही हूँ और अभी जीवन में बचा ही क्या है, ऐसा सोचने के बदले में अगर आप सोचते हैं कि भगवान का इसमें कुछ आपके लिए उद्देश्य है, कुछ कुछ आपके लिए इसमें सोच के रखा है भगवान ने, तो इसलिए ये ऑफकोर्स उसको बहुत टाइम लगता है सब समझाने के लिए। इतना एक 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 लेक्चर के अंदर वो मरीज प्योर डिवोटी नहीं बन जाता तुरंत, उसको टाइम लगता है उसको स्वीकारने में, उसको एक्सेप्ट करने में, समझने में। तो धीरे धीरे क्यों ना हो उनको वो श्रद्धा के लेवल पे लाने का हम प्रयास करते हैं, श्रद्धा देने का प्रयास करते हैं। और श्रद्धा देने के लिए एक तो हमारे शब्द हैं या तो किसी का एग्जाम्पल है कि उनको देखो उनको देखो, और उससे फिर उनका हौसला बढ़ जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, हमको लगता है कि अरे मुझे 104 बुखार आ रहा है, क्या हो रहा है ज़िंदगी में, फिर हम किसी को उनको दिखाते हैं, देखो ये व्यक्ति कैसा है, इसको इतनी भयंकर बीमारी हो गई है, उसको तो हमेशा ऐसे होता है, तो उसको लगता है अरे मुझे तो इतना कुछ नहीं। तो जब वो उससे भी अधिक कोई कष्ट वाला आदमी देखता है ना, तो उसको लगता है मैं तो अच्छा हूँ उससे। जैसे हम लोग जब देखते हैं ना यहाँ के बालकों को, तो हमको लगता है कि हम बड़े भाग्यवान हैं एक्चुअली, क्योंकि देखो हम खुद डॉक्टर हैं नंबर वन, तो बेसिक चीज़ें तो हम खुद ही संभाल सकते हैं, हर चीज़ के लिए हमको भागना नहीं पड़ता है ना, कम से कम मैं डॉक्टर होने के नाते मुझे बेसिक थोड़ा नॉलेज है, और दूसरी बात थोड़ा बहुत इलाज मैं खुद भी कर सकता हूँ बालक का, तीसरी बात मैं एक हॉस्पिटल का ट्रस्टी और डायरेक्टर और फाउंडर डिवोटी हूँ, तो मेरे को यहाँ पर बहुत अथॉरिटी है, चौथी बात मैं यहाँ का स्टाफ हूँ इसलिए मुझे बहुत सारे ट्रीटमेंट यहाँ पर फ्री हो जाती है, हाँ थेरेपी फ्री, कंसल्टेशन फ्री, इन्वेस्टिगेशन फ्री, और दवाई भी 3,000 तक फ्री मिलती है, और मेरे फ्रेंड डॉक्टर्स हैं तो मुझे कई बार दवाई सैंपल में देते हैं और वो मेरा वो भी खर्चा बचा देते हैं, है ना, और कुछ बाहर जाके कुछ टेस्ट करना होता है तो यहाँ के कॉन्टैक्ट की वजह से वो भी डिस्काउंट में हो जाता है, मुझे MRI करना है कुछ कुछ करना है, और जब बच्चा यहाँ पर एडमिट होता है तो एडमिशन फ्री, बेड फ्री, सब कुछ फ्री, खाली दवाई का पैसा देना पड़ता है। अगर ये सब नहीं होता तो मुझे कितने खर्चे होते बताओ आप, कितना कष्ट होता, और मेरा भाग्य कैसे देखो, मैं हॉस्पिटल के बाजू में रहता हूँ, अगर मैं वसई में रहता तो यहाँ पर कई माताएं ऐसे आती हैं जो वसई से, भाईंदर से, कहाँ कहाँ से बच्चे को उठा के रिक्शा में डाल के क्या क्या करके लेके आती हैं, कितना खर्चा है उसका, तकलीफ़ अलग है, उसको रिक्शे से उतारो चढ़ाओ, रिक्शा वाले झिकझिक करो, धूप में लेके आओ उसको, 1 घंटा बिठाओ, ट्रीटमेंट कराओ उसकी, फिर रिक्शा ढूंढो, फिर उसको घर लेके जाओ, खाना खिलाओ, खाना लेके आओ, बीच में उसका सारा चीज़ देखना पड़ता है। तो जब मैं यहाँ पर आता हूँ और देखता हूँ बच्चों को वन बाय वन आते हुए, तो मैं सोचता हूँ मैं कितना भाग्यशाली हूँ। हाँ क्या आ रहा हूँ उसकी तरफ, मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ। तो कितना भगवान ने एक कष्ट दिया है लेकिन कितना सपोर्ट दिया उसके लिए। हाँ, और दूसरी बात, ऐसे गुरु दिए हैं, ऐसे भक्त, भगवान के ऐसे भक्त दिए हैं जो इसका अंडरस्टैंडिंग भी समझते हैं, इसका अर्थ भी समझते हैं, और अर्थ को आपको बता भी रहे हैं, आपको हौसला भी दे रहे हैं, आपको ये भी बता रहे हैं कि जब संकट आ रहा है तो वो साथ में भी है, जब बच्ची एडमिट होती है तो भी सब लोग भाग के आ जाते हैं, हर तरह का सपोर्ट है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू सर्व, हर व्यक्ति अपने इस संकट में सेवा करना चाहता है, जो मे बी उन माताओं को उपलब्ध नहीं है वो सब, ऐसा कॉन्ग्रीगेशन, लविंग डिवोटीज एंड सब लोग तत्पर हैं सेवा करने के लिए और हौसला देने के लिए भी एक्सपर्ट हैं, वो अंदर से आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं, प्रेरणा भी दे रहे हैं, इंस्पिरेशन भी दे रहे हैं। तो ये जब देखते हैं तो ऑटोमेटिक लगता है कि इतना कुछ हमारा बड़ा नहीं काम। जब हम सुनते हैं कि हमारे पास से मरीज हैं जो उसको एक नहीं 3 बच्चे हैं, ऐसे एक ही घर में एक प्रेगनेंसी, सेकंड प्रेगनेंसी, क्योंकि हर बार जब पहले प्रेगनेंसी ऐसी होती है तो माता को लगता है कि एक तो नॉर्मल बच्चा होना चाहिए ना, एक नॉर्मल तो बच्चा होना चाहिए, फिर वापस वो ट्राई करते हैं तो दोबारा वो भी बच्चा वैसा ही होता है, फिर दो होने के बाद सोचते हैं कि हमको कौन देखेगा बुढ़ापे में, एक तो होना चाहिए, तो तीसरी बार ट्राई करते हैं, तीसरी बार भी वैसे ही बच्चा पैदा होता है। यहाँ पर एक माता को तो चार बच्चे ऐसे हैं, तो माधवानंद प्रभु भी मुझे पूछ रहे थे अभी क्या बोलूँ फोर्थ टाइम उसको। पहली बार उसको बताया भगवान की कुछ इच्छा हो गई, सेकेंड टाइम बताया, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम क्या बताएगी उनको, अरे हमारे पास अभी कुछ शब्द ही बचे नहीं हैं, तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं उसको, खाली प्रेम दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं आपके लिए बताइए, क्या आपको हेल्प कर सकते हैं आप बताइए। हर बार उसको लगता है कि उस बच्चे को मैं अभी एबॉर्शन करा दूँ क्या। सबसे पहला प्रश्न तो वहाँ उठता है जब मालूम पड़ता है कि अंदर से कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है उसको सोनोग्राफी के अंदर, तब से बातें शुरू होती है कि इसको गिरा दो, समाज सब बोलता है कि गिरा दो, तीन बच्चे ऑलरेडी हैं आपको, तो कैसे समझाएं उसको कि भगवान की कई योजना है आपके लिए। क्योंकि बोलना बहुत आसान होता है ना, पढ़ के सोना आसान होता है, लेकिन उनको वास्तविक रूप में हेल्प करना मुश्किल होता है बहुत। तो इसलिए हमारा काम यही है उनका हौसला बढ़ाना, उनको श्रद्धा देना, जिसके वजह से वो जीवन का ये कसौटी जो है उसको अच्छी तरह से पार कर सकते हैं। और ये मुमकिन है सब, ऐसा नामुमकिन नहीं है, ये सब मुमकिन है, खाली जो काउंसलिंग करने वाला व्यक्ति होता है उसको बड़ी ही श्रद्धा से और बड़ी ही प्रेम से और करुणा से उनके साथ पेश आना चाहिए। और कभी कभी ऐसा लगेगा आपको कि आप उनको कोशिश कर रहे हैं हेल्प करने का, लेकिन आप ही टूट रहे हैं अंदर से उनको देखकर, ऐसा भी लगेगा आपको। तो इसलिए आप लोगों को इसे ये ग्लास में जितना पानी है ना उतना ही आप लोगों को दे सकते हो। अगर ग्लास खाली हो गया तो कितना भी आपने उल्टा किया तो फिर नया पानी पैदा नहीं होगा, आपको डाला बाहर से लेके डालना होगा उसके अंदर, फिर आप दोबारा दूसरे को दे सकते हो। तो आपके पात्र में कितना है उतना ही आप लोगों को दे सकते हो। जब वो खाली होता है तो आपको ब्रेक लेके उसको भरना पड़ता है दोबारा। मोबाइल तब तक चलेगा जब तक उसमें चार्ज है, हाँ, वो कितना भी बढ़िया वो 4800 mAh वाली बैटरी है उसके अंदर 48 आवर्स चलती है, लेकिन जो 48 आवर के बाद जब समाप्त होती है बैटरी उसको, तो उसको चार्ज करना ही पड़ता है आपको एक घंटे के लिए। वो अनलिमिटेड चार्ज कोई देता नहीं है कोई बैटरी में, है ना। उसी तरह से आप लोगों को तब तक कंपैशन, करुणा, प्रेम, श्रद्धा दे सकते हो जब तक आपके अंदर है। तो जैसे आप 8 घंटा 10 घंटा काम करते हो, 16 घंटा करते हो और फिर सो जाते हो दोबारा उठ के काम करने के लिए, मतलब क्या कर रहे हो, अपने आप की बॉडी को चार्ज कर रहे हो। डिस्चार्ज हो गए शाम को रात को तो आप चार्ज कर रहे हो उसको। कुछ कुछ लोग तो लेक्चर में भी चार्ज करते हैं बीच बीच में तो क्योंकि वो डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया है घर में या किधर, तो भी तो लेक्चर में चार्ज हो जाते हैं। एनीवेज अच्छी बात है वो, क्योंकि ऐसा ना एनीवेज वो बाद में बात करता हूँ उसके बारे में। तो वैसे ही आप उतना लोगों को दे सकते हैं जितना आपके पास है, और उतना ही दीजिए जब तक आपके पास है। क्योंकि जब आपके पास समाप्त हो जाता है ना तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन आता है उसके बाद में, तो उस समय आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए। क्योंकि हर एक व्यक्ति की कैपेसिटी होती है, आप दिन भर 50 माताओं को नहीं मिल सकते, नॉट पॉसिबल। तो आपको तय करना है कि मैं एक दिन में कितनी माताओं के साथ में ऐसे बात कर सकती हूँ। तो आप बोलेंगे कि मुझे 4 लोगों से मिलने की शक्ति है, तो 4 लोगों को होने पर बोलेंगे आज मैं अभी समाप्त करती हूँ और बाकी को कल मिलती हूँ। यह प्रामाणिकता से बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप रोज़ 4 से बात करेंगे तो महीने में आप 100 लोगों से बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक दिन में 10 लोगों से बात करेंगे नेक्स्ट डे आप बिस्तर में सो जाएंगे, तो 100 के बदले में आपको 10 को ही आप दे सके केयर ना। जैसे कि बोलते ना कि एक मुर्गी रोज़ एक अंडा देती है, तो एक व्यक्ति ने उसको काट दिया, बोले कि सर सब अंडे एक साथ में निकाल देता हूँ, अंदर कुछ अंडे नहीं थे, एक ही अंडा था, लेकिन सब अंडे बीज के रूप में थे उसके। एक दिन में वो एक अंडा निकालती थी, तो अगर उसको आराम से आप रहते थे तो कई साल तक उसको एक एक अंडे रोज मिलते, मिलने मुमकिन था, लेकिन सोचा उसके एक ही बार काट के सब अंडे ले लूँगा उससे, तो नहीं हो सका ना, वो उसे टाइम लगता है। उसी तरह से होशियारी इसी में है कि अगर मेरी कैपेसिटी भगवान की दया से 4 लोगों को मिलने की है तो मैं 4 लोगों को मिलूंगी और आराम करूंगी और बाकी काम करूंगी और फिर अगले दिन वापस 4 लोगों को मिलूंगी। उससे मैं रोज़ 4 लोगों को मिल सकती हूँ, महीने में 100 लोगों को मिल सकती हूँ, 2 महीने में 200 लोगों को मिल सकती हूँ। इसको कहते हैं बुद्धिमानी, मतलब हमको बहुत लोगों को हेल्प करना है लेकिन अपनी कैपेसिटी को देख के ही ठीक से करना है इसको। ऐसा तो केयर टेकर को सबसे पहले खुद की केयर लेनी चाहिए, तब वो दूसरों की केयर ले सकता है। अगर केयर टेकर खुद परेशान है तो दूसरों की केयर वो नहीं ले सकता है। इसलिए केयर टेकर्स केयर इज़ अनदर सब्जेक्ट मैटर, एक अलग विषय है कि जो लोग दूसरों की केयर लेते हैं उनको दूसरों की केयर लेने के लिए खुद की भी केयर लेते रहना चाहिए। अगर वो ज़्यादा करेंगे अपने हद के बाहर तो फिर वो आगे जाके केयर नहीं दे पाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे कैपेसिटी चार लोगों की है लेकिन मैं केयर लेने के लिए तीन लोगों को देखूंगा। तो प्रभु जी ने बताया ना अभी कि उतना ही करना है जितना मुझे शक्ति है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना कंजूसी करेंगे, अपना मैक्सिमम कैपेसिटी आपको देना है और उसके बाद में फिर जब हम लगता है कि अंदर अभी सामान खराब ख़त्म हो गया है तो आपको शांति रखना है तुरंत। ऐसा है वो आपको समझ में आएगा कि अभी मैं इसके आगे नहीं कर पाऊँगी। ऐसा आपको अंदर से एक फीलिंग आ जाएगा कि अभी आज मैं थक गई या तो एग्जॉस्ट हो गया, अभी मेरे शब्दों में वो शक्ति नहीं रही जो लोगों को प्रेरणा दें। तो होशियारी से उस समय बेहोश होने के पहले वहाँ से निकल जाना चाहिए। बेहोश का मतलब क्या, हार जाने के पहले निकल जाना चाहिए और अगले दिन दोबारा प्रार्थना करके। और भक्तों का रिचार्जिंग मतलब क्या, चैंटिंग। भक्त लोगों को दोबारा शक्ति प्राप्त करनी है ना तो एक तो है अच्छी तरह से आराम और दूसरा है चैंटिंग। भगवान का नाम का जप करके दोबारा हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है फिर दूसरों को कृपा देने के लिए भगवान की। तो बिना भगवान के नाम के जप के शक्ति के बिना हम लोग नहीं हेल्प कर सकते। वो एक झूठा अहंकार है हमारा कि नहीं नहीं हम तो बहुत साल कर चुके हैं जप तो हमारे में अनलिमिटेड कैपेसिटी काउंसलिंग करने की है। ये समझना भी एक मिथ्या अहंकार है। किसी को भी ये लगना नहीं चाहिए कि मुझे आज मैंने जब भी नहीं किया है और मुझे अभी सेवा दिख रही है सामने तो मैं जाता हूँ सेवा करने के लिए। वो एक मिथ्या अहंकार है कि मैंने कल जब किया था ना उसकी शक्ति होगी ना मेरे पास थोड़ी बात। वो सोचना भी गलत है। बिना रोज का आत्मा का खुराक आत्मा को दिए बिना वो युद्ध भूमि पर नहीं उतरना चाहिए। युद्ध भूमि पर उसको उतरना मतलब शस्त्र के बिना उतरने जैसा हो गया। युद्ध करने जा रहे हैं आप लेकिन आपने चिलखत नहीं पहना है, आपने सिरपेच नहीं पहना है, आपने तलवार नहीं लिया, आपने और कुछ अस्त्र नहीं शस्त्र नहीं लिया है और आप सोचते हो कि मैं खुद ही इतना बलशाली हूँ, मैं खुद अकेला काफ़ी हूँ, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन फिर वो मर जाएगा, हार जाएगा वो। तो बुद्धिमान व्यक्ति ये सब कुछ होते हुए भी युद्ध में जो है सशस्त्र रूप में उतरता है अच्छी तरह से। और कोई प्रश्न है आपका? और ये जो मैंने बताया ये सब लोगों को लागू है, ऐसा नहीं कि खाली जो ऐसे बच्चों के माताओं को मिल रहे हैं। जो भी दर्द में है जीवन में उसको, उसका दर्द बहुत तकलीफ वाला ही होता है उसके लिए, याद रखना। जब आपके पाँव में काटा गया होता है ना तो आपको लगता है कि दुनिया में सबसे अधिक दर्द पाँव में काटा जाने से होता है, ऐसा आपको लगेगा। आपको लगेगा कि ये सर्दी मुझे क्यों हो रही है, इतना तकलीफ हो रही है, देखो इतना सर दुख रहा है, इतना मैं अस्वस्थ हो गई हूँ, इतना मुझे परेशान हो रही है, नाक से पानी रुकता ही नहीं है, ऐसा आपको लगे, इतना बदन दर्द हो रहा है। तो लगेगा सर्दी सबसे बड़ी बीमारी है ज़िंदगी में, सर्दी किसी को नहीं होनी चाहिए, ऐसा आपको लगेगा। तो कैंसर हो गया उसको लगेगा कैंसर में कितना दर्द है, किसी को कैंसर नहीं होना चाहिए, इतनी भयंकर बीमारी है। जिसको किडनी का स्टोन का पेन हो रहा है उसको लगेगा कि किडनी का स्टोन दुनिया में सबसे अधिक पेनफुल है। जिस माता की डिलीवरी हो रही है उसको लगेगा कि डिलीवरी ये सबसे ज़्यादा पेनफुल चीज़ है लाइफ में, ऐसा लगेगा। हाँ, वट एवर यू हैव दैट इज़ द मोस्ट पेनफुल थिंग राइट नाउ। वो ऐसा नहीं बोल सकते अरे क्या आपका डिलीवर है, कौन सी बड़ी बात है, देखो मेरे 9 डिलीवर हो चुके हैं, आपको क्या हो रहा है, ऐसा बोलेंगे तो बोलेंगे अरे आपका 9 हो गया लेकिन मेरे को अभी हो रहा है उसका क्या करूँ, है ना। तो ऐसे काउंसलिंग कभी नहीं करना चाहिए, मतलब हौसला देना चाहिए उसको। क्योंकि ये बात आपको पता होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को जिस वक्त जो दर्द हो रहा है वो सबसे बड़ा होता है और वो समझते हुए आपको करना है। हो सकता है आपने उससे 10 गुना बढ़ दर्द सहन किए होंगे लेकिन आपको उसके सामने वैसा बोल के उसको डिप्रेस नहीं करना है। हरे कृष्णा। तो उसको कहते हैं एम्पैथिक काउंसलिंग, मतलब आप दूसरों के मनस्थिति को समझते हुए काउंसलिंग कर रहे हैं। ये नहीं कि आप तो बड़े कमजोर हो, इतनी दर्द के लिए इतना तड़प रहे हो, कैसे आप हो, इनको देखो इनको देखो मुझे देखो कितना हमने सहन किया है, ऐसा बोलना मतलब उसको और लगेगा कि मैं तो एक तो दर्द में हूँ ऊपर से मैं यूजलेस आदमी हूँ, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं, मैं तो एकदम बेकार आदमी हूँ, ऐसा लगेगा उसको। उसका आपको हिम्मत बढ़ाना है, हिम्मत को कम नहीं करना है। ऐसे बोलने से उसकी हिम्मत कम हो जाएगी, समझा, आप एक माता को मिल रहे हैं और बोल रहे हैं क्या आप एक बच्चे में इतना गड़बड़ रहे हो, उसको देखो तीन तीन बच्चे ऐसे। तो बोला ठीक है, लेकिन मेरे को एक बच्चा अभी भारी हो रहा है, वो तीन बच्चे की शक्ति उसके अंदर होगी, लेकिन मेरे को अभी एक बच्चे का समझ नहीं आया कैसे करूँ मैं। तो हमारा काउंसलिंग का जो एम है ना, वो उस व्यक्ति की उस स्थिति में कैसी शक्ति को बढ़ाया जाए, वो करने की हमारी एम होती है। वो कंडीशन का ये माना माना कि वो कमज़ोर दिल का व्यक्ति है, माना वो बहुत जल्दी रोता है, सब कुछ ठीक है उसके, उस समय पर उसको अगर 1% शक्ति उसके अंदर है, 2% कैसे कर की जाए, ये आपको देखना है। 1 ही % इसलिए उसको दोष नहीं देना आपको, 1 का 2 कैसे किया जाए, 2 का 10 कैसे किया जाए, ये आपको देखना है। वो काउंसलर की खूबी होती है। यशस्वी काउंसलर वो होता है जो मरीज को जो स्थिति है उसमें से उसको ऊपर उठाने का प्रयास करता है, दूसरे को देख के उसको कंडेम नहीं करता है। वो जो भी स्थिति में हो, चलने वाला बालक चलने को नहीं आता, उसको अभी चलने को सीख रहा है, तो आप उसको बोलेंगे क्या, देखो वो आदमी कैसे चल रहा है, कितना अच्छा आदमी है, देखो चल रहा है वो, आप चल भी नहीं पाते हो, लेकिन वो तो बालक है अभी, वो 6 महीने का बालक है, वो अभी तो धीरे धीरे हाथ पकड़ के चलेगा, तो उसको आप कंडेम नहीं करते, उसको हाथ पकड़ के चलने को सिखाते हो, है ना। बड़ा आदमी जो 50 साल का है, उसका फ्रैक्चर हो गया है, वो प्लास्टर में उसको वॉकर दिया है, उसको भी हाथ पकड़ के चलाते हो आप, तो दोनों के हाथ पकड़ के चलाने में अंतर क्या है, एक का पाँव टूटा है प्लास्टर में है और एक को चलने को नहीं आता है अभी, वो खाली ऐसे ही बालक है वो। दोनों को आप उतनी ही करुणा से, उतनी ही प्रेम से हाथ पकड़ के चलने को सिखाते हो, वो काउंसलर का मेन लक्षण है। वो लोगों के दर्द के ऊपर उनका भेदभाव नहीं करता है, वो किसी भी दर्द वाले व्यक्ति को दर्द निवारण कैसे करें, शक्ति कैसे प्राप्त करें, उसका प्रयास करते रहते हैं। और सबसे बड़ी काउंसलर की शक्ति वो होनी चाहिए कि जो दुख आपको मिल रहा है वो सहने की शक्ति और श्रद्धा उसको प्राप्त करके देनी चाहिए। वो दर्द कम नहीं होगा उसका, लेकिन आपने दर्द सहन करने की शक्ति उसको दे दी। दर्द वैसा ही है, बीमारी वैसी है, कष्ट वैसा ही है, लेकिन आपने उसको एक ऐसा दृष्टि दे दिया, ऐसी श्रद्धा अर्पण कर दी उसको, कि वो अभी उसी स्थिति में भी सुकून से, शांति से और थैंक यू भाव से करेगा। एक है उसको एक्सेप्ट करने की शक्ति, दूसरा है थैंक यू बोलने की शक्ति उसके ऊपर वाली। तो वन बाय वन धीरे धीरे आपको उसको उस स्टेज पे लाना है। अगर वो थैंक यू बोल पाया ना, तो उसके ऐसा भाग्यवान कोई और है ही नहीं, ऐसा है। कई लोग बोलते हैं भगवान है ही नहीं, भगवान दुष्ट है, भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है, तो उनको धीरे धीरे समझाना है। ऐसे कैसे बोलते हैं आप भगवान नहीं है, ये सब गलत है, आप नास्तिक हो क्या? नहीं, नास्तिक तो आ जाती है, अरे आपको क्या पता है, अच्छे अच्छे भक्त को भी जब कैंसर होता है ना, तो उनकी भी श्रद्धा ऐसी ऐसी हो जाती है। 20 साल जब किया उन्होंने, जब मालूम पड़ा कैंसर हो गया, तो बोलते हैं क्या फ़ायदा जब करने से, जब नहीं करना ही अच्छा है, इतना करके भी ऐसा होता है तो क्यों करें, जब ऐसे बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वो वड़े वड़े थे ना, वड़े कपल, माताजी मेंटेनेंस में थे, नहीं प्रभु जी मेंटेनेंस में थे और माताजी हाउसकीपिंग में अभी भी काम करती है, मीना वड़ी। तो उनका बच्चा था, 17 साल का बच्चा था, वो पतंग उड़ा रहा था, वो पतंग उड़ाते उड़ाते टेरेस से ऐसा उल्टा गिर गया, वो 2nd फ्लोर से सर पे गिरा और वो कोमा में गया। 17 दिन कोमा में रहा वो, क्या 21 दिन कुछ रहा, फिर मर गया वो, मतलब उसको नहीं बच पाया, वो कोमा में से बाहर निकला नहीं। उसको उन्होंने सब ये लोग मिलकर सब बहुत अच्छा केयर दिया उसको, स्पिरिचुअल केयर बहुत अच्छा दिया उसको, लेकिन जब वो मर गया ना, तब ये सब लोग थे और वो जो प्रभु था उसका मैं देखभाल कर रहा था, माता की देखभाल सब आप लोग कर रहे थे, वो बहुत लोग थे उसके अंदर। तो माता कैसे बोल रही थी, तुमच्या लोकांचा बहुत धन्यवाद आहे, तुम्ही लोकांनी किती मदत केली, किती स्पिरिच्युअल केअर दिली, किती प्रार्थना केली, याच्याकरता किती काय काय केलं, थँक यू व्हेरी मच, तुमचा मी खूप ऋणी आहे, आय एम व्हेरी थँकफुल टू यू, मैं आपके धन्यवाद देती हूँ, आपने कितना किया उसके लिए, आपने कितना प्रार्थना किया, कितना स्पिरिचुअल केयर दिया, ऐसा होके वो रो रही थी। और पति क्या बोल रहा था मेरे साथ बैठ के, अरे ये कृष्ण की हमने भक्ति किया, ये कृष्ण का मेरे बच्चे ने भी जप किया और मैं भी करता था 16 माला, मेरी पत्नी भी करती थी, फिर भी कृष्ण ने हमारा जवान बालक छीन लिया, अब मैं उसकी भक्ति भी नहीं करूँगा, अब जपा छोड़ दूंगा मैं, या ऐसा कोई भगवान होता है क्या जिसका नाम लेने से वो जवान बच्चे को ऐसा लेके जाना ठीक है क्या, कितना बड़ा अन्याय है हमारे ऊपर, ये इतना सब करने के बाद में हमारा बच्चा भगवान ने छीन लिया, अब नहीं करूँगा उसकी भक्ति में, नहीं करूँगा भक्ति में। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं बोला उसको, कुछ भी नहीं बोला, एक वाक्य भी नहीं बोला, खाली कंधे पे हाथ रखे, मैं खाली कंधे पे उसका हाथ घुमाता रहा, उसका जो दिल का बात था वो सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा। बहुत देर वो बोला, मैं कुछ नहीं बोला, फिर वो शांत हो गया, फिर वो घर चला गया, उसका अंत संस्कार हुआ वगैरह वगैरह। 3 दिन के बाद में वो व्यक्ति दोबारा हॉस्पिटल में आया, खास करके मुझे भी मिलने को आया। बोला प्रभु जी सॉरी, हाँ उस दिन मैंने बहुत सारा बुरा भला भगवान को बताया, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि भगवान ऐसा है। अभी मैं उस समय अगर बैठ के उसको उसी समय उसको प्रीच करता कि प्रभु जी ऐसा बोलना सही नहीं है, ऐसा गलत बोल रहे हैं आप, ऐसा भगवान के बोलने से आपसे आपके अपराध होगा, ऑलरेडी आपके पूर्व पाप से आपका बच्चा मर गया, ऊपर से आप और एक अपराध कर रहे हो, ऐसा अगर उसको बोलता मैं तो उसकी मतलब मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, उसकी बची कुछ श्रद्धा जो है ना उसको भी तोड़ रहा हूँ। उसकी जो बची कुछ श्रद्धा है उसको भी ख़त्म कर रहा हूँ मैं एक्चुअली, काउंसलिंग के बहाने, काउंसलिंग के नाते मैं क्या कर रहा हूँ, उसको हौसला देने के बदले में उसकी बची कुछ श्रद्धा को भी नष्ट कर रहा हूँ। लेकिन लग क्या रहे हैं, ये तो बात तो सच कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, लेकिन वो सही बात उस समय करना गलत है, इसलिए कुछ भी नहीं बोला। अपने आप वो बाद में आके उसने मेरी माफ़ी मांगी और भगवान की भी माफ़ी मांगी, अभी वो जब करता है। तो एक ही घटना हो गई, लेकिन दोनों की जो चेतना है उसके अनुसार दोनों के अलग अलग रिस्पॉन्स आ रहा है आपको, और एक ही प्रसंग में आ रहा है। आप लोग बैठ के एक ही प्रसंग में संभालने का प्रयास कर रहे हो, एक आदमी गाली दे रहा है, एक आदमी थैंक यू बोल रहा है। तो कैंसर पेशेंट में, मरने वाले पेशेंट में कैसा होता है, मरने वाला पेशेंट एक्सेप्टेंस में है कि भाई वो आई एक्सेप्ट कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन बहू बोल रही है नहीं 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 हम सब इलाज करेंगे, हम आपको बचाएंगे, आप चिंता मत करना, हम सबसे बड़े डॉक्टर को लेकर आएंगे, जितना पैसा भा देंगे सब कुछ, लेकिन आपको मरने नहीं देंगे, आप नहीं मरेंगे। मतलब क्या है, वो डिनाइल में है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और उसकी बेटी जो है वो एक्सेप्ट कर चुकी है कि वो मरने वाले हैं, लेकिन वो डिप्रेशन में गई है, मेरे पिताजी मर जाएंगे फिर मेरा कैसा होगा, मेरी शादी कैसे होगी, पढ़ूंगी कैसे, आगे क्या होगा मेरा, वो डिप्रेशन में है। दूसरा कोई लड़का होगा वो गुस्से में है, बोला इनको मैंने कहा था लास्ट ईयर ही चेकअप करो, लेकिन इन्होंने चेकअप नहीं किया, और वो बोले ऐसा है वैसा है, उनको समझना चाहिए था ये इनकी गलती है इसलिए ऐसा हुआ, अगर मैंने सुनते तो ऐसा नहीं होता, तो वो एंगर में है। तो एक ही स्थिति है, पिताजी को कैंसर हो गया है, लेकिन हर एक आदमी का रिएक्शन अलग अलग है। तो काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि उनको आप सब लोगों को धीरे 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 एक्सेप्टेंस में लाना है आपको, सब लोगों को इसको काउंसिल करके उसको काउंसिल करके सबको मिलके धीरे धीरे उनको चलो अभी ये होने वाला है हम एक्सेप्ट करते हैं अभी आगे क्या करना है। तो सबको तो जब भी कीर्ति माता जी का देहांत हुआ ना, तो जब बीमार थे वो, तो सब लोग एक ही लेवल पे थे एक्सेप्टेंस के ऊपर, इसलिए माँ माता जी को सबसे बेस्ट सेवा मिली, क्योंकि वो भी एक्सेप्टेंस में थे और उनके पति, उनके बच्चा, उनकी बेटी, उनके जमाई, उनका बेटा, उनकी बहू, सब एक ही लेवल पे थे। कोई बात नहीं, जो भी है हम लोग उसकी सेवा करेंगे एंड तक, अभी तो उनको बेस्ट सेवा मिली। लेकिन महाप्रभु जी की जो पत्नी का जब देहांत हुआ, थोड़ा सा फर्क था उसके अंदर, क्योंकि बेटा डिनाइल में था, पेशेंट और प्रभु जी एक्सेप्टेंस में थे, लेकिन बेटा बोल रहा था नहीं 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 मैंने मरने दूंगा उसको, मैं लास्ट मोमेंट तक उसको केमोथेरेपी दूंगा, लास्ट मोमेंट तक उसको दवाई दूंगा, मैं थोड़ी उनको मरने दूंगा ऐसे। तो माता जी के इस ट्रीटमेंट के अंदर बहुत कशमकश हुई, पति एक बोल रहा है, बच्चा एक बोल रहा है, डॉक्टर एक बोल रहे हैं, तो उनको कन्फ्यूजन में गई वो, मैं क्या अभी करूँ। फिर भी वो बहुत हमने हेल्प करने का ट्राई किया उनका, लेकिन जब तक सब लोग एक्सेप्टेंस में नहीं आते ना उसके, तब तक बेस्ट केयर उनको नहीं मिल सकती है। जब उनके अंदर द्वंद्व है कुछ कि भाई ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, वो बोल रहा है कि उसको अभी पूरा हॉस्पिस में दे दो, हॉस्पिस में, बोला नहीं नहीं अभी मेडिकल में ट्राई करना है हमको, नहीं नहीं अभी तक कंपनी छोड़ा नहीं उसका आशा। जब ऐसे दो मत प्रवाह उत्पन्न होते ना, तो फिर मरीज को उसका पूरा लाभ नहीं मिल सकता है सेवा का, और वो अपने हाथ में नहीं रहता है। हमको ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि हम लोग फेल हो गए कन्विंस करने में, वो जिम्मेदारी आपकी नहीं है, वो उनका प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आपको डिप्रेशन होने की जरूरत नहीं है कि अरे हम लोग ही फेल हो गए, हम लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए, नहीं नहीं आप भगवान नहीं हो, आप खाली मीडिएटर हो, उसको कहते हैं फैसिलिटेटर, आप खाली उसको फैसिलेट कर रहे हो, जितना हो सके उतना कोशिश कर रहे हो, लेकिन उनका जो मत प्रवाह अलग अलग देखकर आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप खाली अपना सेवा करो, ट्राई करो, जितना आपको हो सकता है उतना करो, मैक्सिमम उनको हेल्प करो उनके कंडीशन के अंदर। कंडीशन बदली हो गई तो फिर पूरा लाभ दो उनको। जैसे अभी वो गीता व्यास के फादर इन लॉ का डेथ हो गया, तो सब लोग एकदम एक्सेप्टेंस में थे, तो पूरा डेथ केयर उनको पूरा दिया गया। तो धीरे धीरे वो माताओं को अगर आपने एक्सेप्ट करवाया कि हाँ ठीक है, जो भी है भगवान की इच्छा से ये हुआ है, कुछ हेतु भगवान का होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं हमेशा एक ही बात सोचता हूँ जो आप मरीज़ को बता सकते हैं, उनको बताना ये है कि आपको ये देखना है कि इसमें आपकी सेवा क्या है। बस रोने वोने के बदले में हर एक व्यक्ति का एक फ़र्ज़ होता है कि अभी ये इस कंडीशन के अंदर मेरी सेवा क्या है, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। वो अगर किसी को लगता है ना, वो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो सोचता नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होना चाहिए था, ये सब इसमें एनर्जी वेस्ट करने के बदले में वो खाली एक ही सोचता है कि अभी आज के स्थिति में इसमें मेरी सेवा क्या है, द बेस्ट क्वेश्चन टू आस्क। तो माता को बोलना चाहिए आप अभी बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हो, अच्छा ठीक है, मतलब कोई बुरा नहीं, इसमें पाप नहीं है, लेकिन बेस्ट प्रश्न इसमें ये रहेगा कि मैं अभी क्या कर सकती हूँ, मेरा रोल क्या है इसके अंदर, मेरी कैपेसिटी क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। वो अगर आपको क्लियर पता है तो आप सोचो ही मत, आपका जो करना है वो करते रहो, बाकी जो होना है वो होने दो। इस कंडीशन में आदमी बेस्ट सेवा कर सकता है। बहुत दुख हो रहा है मुझे, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि अभी मुझे क्या करना है इसके अंदर। अभी गिरिराज प्रभु के पिताजी का देहांत हो जाएगा एक दो दिन के अंदर, सबको दुख होगा नो डाउट, लेकिन देखना यह है कि अभी ये उस प्रसंग के अंदर मेरी सेवा क्या है, मुझे क्या करना है। बस वो करते रहेंगे आप तो हमेशा आप सुकून में रहेंगे। ऑलवेज थिंक व्हाट कैन आई डू, व्हाट इज माय सर्विस, इसमें मेरी सेवा क्या है। वो आपको समझ में आया ना तो आप बड़े भाग्यवान हो। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ पता नहीं, ये बहुत पुरानी बात है, जब हॉस्पिटल नया नया खुला था ना तभी की बात है ये। कुछ नहीं बोलना चाहिए उनको, उनको बिल्कुल प्रीच नहीं करना चाहिए, आपको बिल्कुल नहीं प्रीच करना चाहिए उनको। क्यों बोलना चाहिए, आप हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आप बताइए हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। उनको वो जब दिखाएंगे ना आप कि आप उनको हेल्प करने को तैयार हैं और आप हेल्प कर भी रहे हैं और आपकी हेल्प से उनको सहायता भी हो रही है, तो उनका भगवान का श्रद्धा जो है ना वो बने रहता है कि भगवान ने हमको कष्ट दिया लेकिन उनके फरिश्ते भी दिए हेल्प करने के लिए, तो श्रद्धा बढ़ जाती है उनकी। उस समय उनको कभी भी प्रचार नहीं करना चाहिए, अति संकट के समय किसी को प्रचार नहीं करना चाहिए। वो बोलेगा क्या मैंने पाप किया है, क्या क्या भगवान मुझे नाराज है, क्या भगवान गुस्सा कर रहे हैं मुझे ऊपर, मैंने इतना भयंकर पाप किया होगा शायद। तो केवल सुनना है आपको, उसको जवाब नहीं देना है आपको कि हाँ आपने किए हैं, नहीं नहीं आपने नहीं किया है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है आपको। जस्ट कीप क्वाइट, जस्ट बी लविंग एंड केयरिंग, और उनको क्या कर सकते हो देखो आप उसके लिए। अल्टीमेटली वो संकट जो आया है उसको निभाने के लिए उनको ना सहायता और बल चाहिए, तो जो भी उनको बल और सहायता देता है ना वो फिर उसके सहारे आगे चले जाते हैं। हमको वही करना है, हमको उनको बल देना है बाहर से और उनको सहायता करनी है, सेवा करनी है उनकी बस। बाकी हम लोग तो भगवान तो है नहीं, ऐसा क्यों हुआ एक्सप्लेन करने के लिए, तुमको चार क्यों हुए, उसको एक ही क्यों हुआ, ऐसा हु आर वी टू फाइंड आउट, या नो वन, वी डोंट क्लेम टू फाइंड आउट। वैसे जो भी है हमको खाली देखना है हमको क्या करना है उसके अंदर, बस व्हाट वी कैन डू, दैट्स ऑल। मुझे पता नहीं, अगर मैं वो माता को चार बच्चों के मिलूंगा तो मैं, मुझे पता नहीं मैं उसमें क्या बोलूंगा उसको, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि आप बताइए क्या कर सकते हैं आपके लिए हम। हाँ होता है ना वो भी प्रॉब्लम, कुछ नहीं उसमें, कुछ डिफिकल्टी नहीं है। उनको ना आध्यात्मिक बल देना चाहिए, बस मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। हाँ कर सकते हैं।